हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 29 एंड 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तथाग्रह न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवीति। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीरात् मृत्तिकाया हृदयस्य चूरम् चूराग्यगण्यम् पुरुषम् नमामि श्रीकृष्णश्यामम् मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरतरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदेसाङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यम् ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग, जिसे हमने विदुर जी की बहुत ही सुंदर शिक्षाओं को सुना, तो विदुर महाराज बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर बूढ़ा हो, शरीर क्षीण हो, उससे पहले आत्मा को चेतना के द्वारा इस भौतिक आसक्ति से दूर भगा ले, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। आत्मा के ऊपर अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ होता है, जिसके कारण आत्मा इस शरीर को मैं मान बैठता है और शरीर के साथ अपना इतना प्रेम बढ़ जाता है कि जीव आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वास्तव में बुद्धिमान वो है जो शरीर क्षीण हो उससे पहले ही आत्मा को इस भौतिक दुनिया, भौतिक संसार की जितनी आसक्ति है उससे बाहर निकाले, उसे नरोत्तम कहा जाता है। परंतु आज संसार में देखा जाता है कि शरीर की चेतना में अभी तक भौतिक आसक्ति लगी रहती है, आत्मा भौतिक आसक्ति में लगी रहती है, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में लगी रहती है और जीव का शरीर ही साथ छोड़ देता है। और ये वास्तव में हमारा सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ी हानि है। अगर एक इंसान की कोई हम कह सकते हैं, जैसे हम हर चीज में अपनी लाभ और हानि का विचार अवश्य करते हैं, कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। तो एक जीव की, एक मनुष्य की सबसे बड़ी हानि ये है कि शरीर छूट जाए और अभी तक आसक्ति भौतिक वस्तुओं में लगी रहे। इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। ये वास्तव में सबसे बड़ा दुरुपयोग है मनुष्य जीवन का कि भौतिक आसक्ति बनी रहे और हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज को कह रहे हैं कि आप नरोत्तम तो बन नहीं सके, परंतु अब धीर ही बन जाइए। अब ये तो जान ही रहे हो कि शरीर में अब तुम्हारे कोई शक्ति रही नहीं, तो अब तो चले जाओ इस भौतिक आसक्ति का त्याग करके। कहीं इस त्याग से पहले शरीर छूट गया तो फिर पता नहीं इस शरीर, इस आत्मा को कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में बुद्धिमान वो है जो शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों से अपनी आसक्ति छोड़कर भगवान के श्री चरणों में लगाए, क्योंकि अंततः तो सब कुछ छूटने ही वाला है ना। एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चार, मैं मृत्यु बन कर आऊंगा, सब कुछ छीन लूंगा। तो क्यों ना कृष्ण मृत्यु बन कर आए और सब कुछ छीन ले, उससे पहले ही हम कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़कर उनके श्री चरणों में अपने प्रेम को निर्माण करें। यही वास्तविक सिद्धि है एक जीव की। तो आज विदुर जी का उपदेश काम कर गया, हृदय में लग गया। और इससे पहले भी सैकड़ों हजारों बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र महाराज को उपदेश दिया था, परंतु असर नहीं हुआ। लेकिन आज असर कर गया। इसलिए हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। अगर किसी को एक बार सुनने से, दो बार सुनने से, तीन बार सुनने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब छोड़ देते हैं प्रचार करना। नहीं, प्रचार करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब जीव का सत्वगुण विकसित हो जाएगा, पुण्य कर्म उदय होंगे, तो भगवत भक्ति के अंदर अवश्य रुचि लगेगी। तो सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। और आज सूत गोस्वामी अत्यंत सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आज मीढ चित्वा स्वेषु स्नेह पाश दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताथ्वा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आज मीढ चित्वा स्वेषु स्नेह पाश दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रांति संदर्शिताथ्वा। एवं राजा विदुरेणानुजेन, एवं मतलब इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जो कि उनके क्या थे, उनके अनुज थे। तो इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को जब उनके अनुज ने, तो अनुज से एक ऐसे आशा आती है हृदय में कि क्योंकि वो छोटे भाई थे। वास्तव में जो छोटे भाई होते हैं, अनुज होते हैं, वो अपने बड़े भाई को पिता के समान मानते हैं और बहुत स्नेह करते हैं। तो यहाँ से दिखाया जा रहा है, सुत गोस्वामी दिखा रहे हैं कि विदुर क्योंकि छोटे भाई थे धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र विदुर को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज को अपने पिता समान मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। और इस प्रकार से जब उन्होंने स्नेहमय शब्दों से, हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत कठोर शब्द बोले थे विदुर जी ने, है ना, कितना उनको बहुत ही पछाड़ा था शब्दों के द्वारा कि एक तो आपकी आयु समाप्त हो गई है और दूसरा आप उनके टुकड़ों पे पल रहे हो जिनको मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी उनको अग्नि से मारने की, अग्नि से जलाकर राख करने की कोशिश की, तो कभी विष देकर मारने की कोशिश की, तो कभी उनकी पत्नी को अपमानित किया बड़ी सभा में। और एक तरफ तो आपने उनको इतना मारने की कोशिश की हर तरह से, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने आपके सारे पुत्रों को मार ही डाला। इनमें से एक पक्ष भी यदि होता, अगर एक भी बात होती तो भी आपको उनके यहाँ पर खाना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो दोनों साइड से आप ही अपमानित हो रहे हो। अगर उनको मारने की कोशिश की होती खाली, तो भी आपको हक नहीं था उनके घर का खाने का। लेकिन अब तो आपके सारे पुत्रों को मार ही दिया उन्होंने, फिर भी यही तो बहुत ही कठोर शब्दों से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था। परंतु यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं, एवं राजा विदुरेण अनुजेन, अनुज की तरह। क्योंकि जब बड़े देखते हैं, हम देखते हैं कि बड़े कोई ऐसा कार्य करते हैं तो हमें कुछ उनके लिए ऐसा करना चाहिए, हृदय के अंदर स्नेह का भाव होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनके कल्याण की भावना होनी चाहिए। स्नेह होता है लेकिन कभी कभी शब्द ऐसे निकालना पड़ते हैं उनके कल्याण के लिए। तो विदुर जी के हृदय में धृतराष्ट्र के प्रति कोई दुर्व्यवहार करने की इच्छा नहीं थी, उनका अहित करने की इच्छा नहीं थी, परंतु उनका कल्याण करने की इच्छा थी। इसीलिए सुत गोस्वामी कहते हैं, एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आजमीर। प्रज्ञा चक्षु, आजमीर कहते हैं जो आजमीर वंश के थे, विदुर महाराज जो थे आजमीर के वंश से थे। अब उनकी प्रज्ञा चक्षु मतलब वास्तव में जो अंधा व्यक्ति होता है ना, उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। मतलब अंधे व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, जब उनको बोला जाता है ना कुछ, तो उसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से विचार करता है, क्योंकि उसके पास और कोई सहारा नहीं है, देख तो सकता नहीं है, तो केवल शब्द का ही सहारा होता है। और वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ शब्द को सुनता है और फिर उस पर विचार करता है। ये गुण है। और अब तक धृतराष्ट्र महाराज सुनते आ रहे थे, बचपन जब से पैदा हुए थे श्रवण ही किया उन्होंने, यहाँ तक कि संजय ने तो उनको युद्ध का पूरा अहवाल सुना दिया। जो कुछ युद्ध में हो रहा था वो सारा का सारा एज इट इज संजय ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता भी पूरी की पूरी सुनी उन्होंने, परंतु उनके हृदय में कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था। तब तक वो प्रज्ञा चक्षु नहीं थे, इसीलिए आज सुत गोस्वामी उनको प्रज्ञा चक्षु कहते, क्योंकि आज उनका विवेक जागृत हुआ था, उनकी बुद्धि में ये बात। वास्तव में जीव के अंदर जब बुद्धि में ये बात आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना है, भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और अपने भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से अपनी आसक्ति को कम करके भगवान के श्री चरणों में आसक्ति का निर्माण करना है, तभी वो प्रज्ञा चक्षु बनता है। इसी कहा प्रज्ञा चक्षु बोधिता, अब उनको बात समझ में आ गई थी, और वो उनकी नेत्रों पर जो अज्ञान का, जो आसक्ति का पर्दा लगा हुआ था वो हट गया। और चित्वा स्वेशु स्नेह पाशांद्र डिम्नो या दृढ़ डिम्नो, मतलब वो जो बहुत ही दृढ़ता के कारण उनका स्नेह पाश जो था, बंधन जो था स्नेह का, जो बहुत ज्यादा आसक्ति थी राज्य में, सिंहासन में, वो छित्वा तोड़कर स्वेशु यानी कि संबंधियों के विषय में, जितने उनके संबंधी थे, भले घर में जो भी थे, पांडव के पुत्र थे इत्यादि, उनसे जो स्नेह का पाश था, जो बहुत ही दृढ़ता से जकड़े हुए थे उसमें, उसको छित्वा, उसने उनको छित्वा यानी कि काट दिया। जैसे तीस तलवार होती है ना, तो कैसे रस्सी के अंदर बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन अगर तलवार बहुत तेज होती है तो उसको काट देती है। वैसे ही विदुर जी के जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जो वचन होते हैं वो भले ही तलवार की तरह कठोर होते हैं, परंतु वो ज्ञान की तलवार से ही भौतिक बंधन को काटा जा सकता है। तो आज विदुर जी के इन कठोर शब्दों की तलवार से छित्वा स्वेशु स्नेह पाशांद्र डिन्मो, तो इनके जो बहुत ही गहरा स्नेह का पाश था बंधनों में, वो सब आज टूट गया। और निश्चक्राम, वो निकल गए। तो मानो कोई पूछे कि कैसे निकल गए, वो तो अंधे थे, उनको तो रास्ता भी खबर नहीं होगा कि किस तरह से किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। तो फिर बताते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी, भ्राति संदर्शिता था। भ्राति मतलब अपने भाई द्वारा संदर्शिता यानी दिखलाए हुए, अथवा मुक्तिपथ, वो मुक्तिपथ जो वेदुर जी ने उनको दिखाया था, वेदुर जी ने उनको बताया था। अभी यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन महाभारत में ऐसे बताया जाता है कि उनके भाई भ्रातृ संदर्शिता, उनके भाई विदुर जी हाथ पकड़ कर चल रहे थे, उनका उनके साथ गए थे विदुर जी, और विदुर जी का भाई धृतराष्ट्र, विदुर जी का हाथ धृतराष्ट्र महाराज ने पकड़ा था और धृतराष्ट्र महाराज का हाथ उनकी पत्नी गांधारी ने पकड़ा था, ऐसे साथ साथ जा रहे थे। तो अनुवाद देखिए, इस प्रकार अजमेर की संतान महाराज युधिष्ठिर ने प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश छिन्न कर दिए। तत्पश्चात वे घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद भागवतम के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के सिद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए। वास्तव में भक्तों यदि भक्तों का संग मिल जाता है ना, तो भक्ति करना बहुत सरल होता है। जैसे हम अकेले होते हैं घर में, तो ऐसा हम माहौल नहीं क्रिएट कर पाते भक्ति का। लेकिन भक्त होते हैं तो फिर कंटिन्यूअस भगवत चर्चा रहती है, कीर्तन चल रहा होता है, मंगल आरती हो रही है, प्रसाद, मतलब भक्तों का संग आपको बहुत ही सरलता से भगवान के पास पहुंचा देता है। इसी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हमें यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। यदि कुछ क्षणों की प्रथम भेंट के समय कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा ना हुई होती, तो अंग्रेजी में श्रीमद भागवतम के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना असंभव होता। उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी थे, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षणों के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया था, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अति तक असफलता ही हाथ लगी थी। असफल जीवन होते हुए भी उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेश से, जो साधु का प्रतीक होता है, आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। इससे साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस जगत में माया के स्नेह बंधन का छिन्न करने वाला है। यह सत्य है, यह जगत महान मोह ब्रह्म है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छू मंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविकता प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण क्षण भंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। किंतु काल क्रम से बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ लुप्त हो जाती है, परंतु आकाश रह जाता है और आकाश के तारे रह जाते हैं। इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, वे शाश्वत आकाश तथा वैचित्र्य के से सरोकार रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का यहाँ पर हमें बताया है कि थोड़ा सा भी जब साधु का संग हो जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मैं युवावस्था में था, गृहस्थ था, तो उस समय कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की एक कृपा दृष्टि हुई मुझ में। और प्रथम बार जब उन्होंने अपने गुरु महाराज से भेंट की थी, उसी समय सिर्फ आए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने श्री प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि आपको पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए श्रीमद भागवतम और भगवदगीता का। तो फिर उस श्रील प्रभुपाद जी उस घटना को याद कराते हैं कि अगर उस समय मेरे गुरु महाराज की मुझ पर कृपा ना हुई होती तो शायद मैं इतना बड़ा कार्य कभी ना कर सकता। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम भी किया था, बहुत राजनीतिज्ञ में और बहुत सारे दूसरे योजनाओं में उन्होंने बहुत कार्य किया, परंतु हर जगह उसे असफलता प्राप्त हुई थी। उसका जीवन असफलता का मूर्तिमान प्रतीक था। हर समय उसने अपने जीवन में असफलता प्राप्त की थी, परंतु आज जैसे उसको एक शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ गया। हमें जब लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, भले हमें हमारे जीवन में कुछ ना मिला हो, लेकिन यदि शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो वो सब कुछ। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक जगत में जितना भी सौंदर्य, जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी वैभव दिख रहा है, वो तो आकाश में बादल के समान है। वो बादल आते हैं, छट जाते हैं और सिर्फ आकाश ही रह जाता है। उसी तरह भौतिक जगत में जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे जितना ही यश हो, वो सब तो बादल की तरह है, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। एकमात्र भगवान बाकी रहेंगे। तो यदि किसी ने भौतिक जीवन में बिल्कुल असफलता प्राप्त की हो, कोई सफलता ना हो, अगर उसको किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए और उसने अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ा दिया, तो समझो उसकी सारे जीवन की असफलता साफ हो गई और वो भगवत प्राप्ति की ओर जब जाता है, तो यही तो जीवन की सफलता है। और यही एक शुद्ध भक्त का यहाँ पर विदुर जी हमें प्रमाण दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त जब किसी के साथ संपर्क करता है, जब किसी को कुछ कहता है, तो वो चाहे कितना ही झगड़ा हुआ हो तो भी वो इस भौतिक जगत से अपने सारे संबंधों को छित्वा स्वेशु स्नेह पाशात, जितने भी स्नेह पाश थे, वो जो जितना भी जकड़ा हुआ था बंधनों से, वो सब तोड़ दिया। वास्तव में प्रवचन इसी को कहते हैं, जब आप किसी को प्रवचन करो तो उसका सारा मोह, उसकी सारी आसक्ति, उसका बंधनों के जो भौतिक बंधन है, वो सारे एक साथ ही खत्म हो जाए और उसका हृदय जो भौतिक गंदगी से भरा हुआ है, वो पवित्र होकर भगवान के श्री चरणों में लग जाए। तो आज विदुर जी के इस पर प्रवचन के कारण धृतराष्ट्र का मलिन हृदय पवित्र हो गया और वो अपने भाई के दिखाए हुए पथ की ओर अग्रसर हो गए। परंतु वो अकेले नहीं गए। जब विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र महाराज ने घर छोड़कर हिमालय जाने का निर्णय किया, तब क्या हुआ आगे कहते हैं सुत गोस्वामी। पतिम प्रयातम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता शानुजागा मसात्वी हिमालयम् न्यस तदंड प्रहर्षम मानस्विनामीव सत्सं प्रहार पतिम् प्रयान्तम् सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम सात्वी हिमालयम् न्यस्तदंड प्रहर्षम् मानस्विनामीव सत्सं प्रहार पतिम् प्रयान्तम् सुबलस्य पुत्री पति व्रता चानुजगाम सात्वी हिमालयम् न्यस्तदंड प्रहर्षम् मानस्विनामीव सत्सं प्रहार पतिम् प्रयान्तम् पति जब उसका पति प्रयान्तम् घर त्याग त्यागने जा रहा था घर त्याग रहा था तब सुबलस्य पुत्री गांधारी के पिता का नाम था सुबल और उनकी पुत्री योग्य पुत्री थी गांधारी। तो तब गांधारी भी अपने पति के साथ चलती। वास्तव में भक्तों ये नारियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक दृश्य है। ये सुबलस्य पुत्री बहुत बहुत बड़ा राज्य था उनके पिताजी के पास। गांधार जिसको पहले कहा जाता अब जो अफगानिस्तान या कंधार के नाम से है तो उसमें बहुत सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जब उसे ये पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है देख नहीं सकता तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ने दो विशेषताएं दी हैं उसकी गांधारी की प्रतिव्रता और साध्वी। तो पतिव्रता होने के नाते वो पतिव्रता स्त्री थी तो शास्त्रों में पतिव्रता स्त्रियों का नाम जब भी आता है उसमें गांधारी का नाम अवश्य होता है। जब विवाह के समय जब उसे पता चला मेरे पति किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते किसी भी स्त्री को देख नहीं सकते तो जब मेरे पति किसी अन्य स्त्री को पूरा जीवन नहीं देख सकते तो आज से मैं भी पूरा जीवन किसी भी पर पुरुष को नहीं देखूंगी। इतनी महान स्त्रियां भारतवर्ष में होती हैं तो हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर इनके जीवन में हम देखते हैं इनके पुत्र और कुंती महारानी के पुत्र सदैव इनके पुत्रों में सदैव अनबन रहती थी दुर्योधन के कारण परंतु इन दोनों महान स्त्रियों में कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ। कभी कुंती और गांधारी ने एक दूसरे को नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र ने ऐसा किया तुम्हारे पुत्र ने बल्कि हम देखते हैं जब युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर जब रात होती थी तो क्या करते युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना देते थे और कुंती महारानी गांधारी की सेवा करती थी। युद्ध के बाद जब उनके पुत्र सब मृत्यु हो गई थी तो भी इनकी सेवा करते थे। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कुंती महारानी तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ नारी है। वो तो हमेशा गांधारी को बड़ी दीदी बड़ी बहन करके उनकी सेवा करने के लिए सदैव रहती थी। तो यहाँ पर गांधारी के विषय में बता रहे हैं कि ये पतिव्रता नारी थी। अब वो एक बहुत बड़े राजा की पुत्री थी सुबल जिनको बहुत ज्यादा अब राजा की पुत्री है बचपन से जाहिर सी बात है उसको बहुत ही राजसी लेवल का मतलब लाइफ स्टाइल होता है उनका। लेकिन फिर भी उसने विवाह होते ही अपने उस राजसी ढंग को नेत्रहीनता में बदल दिया है ना। हालांकि भगवान की ओर से उसके पास नेत्र थे परंतु उसने कहा कि नहीं मेरे पति जब नहीं देखते संसार को, यहाँ आनंद नहीं लेते तो मैं कैसे, तो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना बहुत बड़ी बात है। और आज जब उनके पति भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो वो राजमहल के सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उनके साथ जा रही है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये हिमालय जो है, हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम, ये हिमालय वास्तव में न्यस्त दंडम, जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं उनके लिए है। और ये बहुत ही कष्टदायक जगह है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमें कोई सुख सुविधा मिलेगी। हिमालय में बहुत कष्ट है और सबसे बड़ा कष्ट तो हिम का है, अर्थात बर्फ, सदैव बर्फ बरसती रहती है वहाँ पर। चाहे गर्मी का गर्मी की ऋतु भी होती है तो भी वहाँ पर बहुत ठंडा रहता है। तो अभी इतनी वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर कोई किचन नहीं होगी, वहाँ पर कोई प्रसाद बनाकर नहीं देगा, बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे, सोने की कोई सुविधा नहीं होगी, खाने की कोई सुविधा नहीं होगी। वहाँ पर हमारे पास कुछ बनाने के लिए कोई वस्तु इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जाकर तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा ना। लेकिन यह पतिव्रता स्त्री थी, उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर तो फिर भी मुझे चार वक्त खाना मिल रहा है, दो वक्त की रोटी मिल रही है, आराम से जिंदगी कट जाएगी, वैसे भी पट्टी बंधी हुई आंखों में, मैं क्यों जाऊँ उसके साथ। नहीं, वो पतिव्रता थी और साध्वी थी। जिस प्रकार श्री राम को जब पिताश्री ने वनवास में जाने के लिए कहा, मतलब कैकेयी ने जब कहा कि आपको विशेष हासी चौदह बरस राम बनवासी, कि राम को तपस्वी का वेश धारण करके 14 साल तक वनवास में जाना पड़ेगा। तब सीता मैया ने कहा, प्रभु मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी, मैं तो आपके चरणों की छाया हूँ, आप सीधा जाओगे मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें कहा था कि सीता वहाँ पर बहुत कष्ट है, वन में तो बड़े बड़े जानवर हैं, वहाँ पर खाने को भी नहीं मिलेगा, और तुम कितनी सुकुमारी हो, अभी अभी हमारा विवाह है, तुम इतनी वहाँ पर इतना कष्ट नहीं झेल सकोगी, मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ, तुम क्यों चल रही हो। तब सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे हो, और जिस समय मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया था उस समय मुझे मेरे पिता ने भी यही आज्ञा दी थी कि जिस तरह से तुम्हारे पति रहेंगे वैसे ही तुम्हें रहना है, जहाँ तुम्हारे पति होंगे तुम्हें वैसे उनके साथ ही होना है। मैं आप वनवास में जा रहे हो और मैं यहाँ राजमहल का आनंद भोगूं, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। तो वास्तव में साध्वी पत्नी होती है जो हर दुख में अपने पति का साथ देती है। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है सूत गोस्वामी, पतिव्रता चानु जागम, चानु जगाम का क्या मतलब होता है, पीछे पीछे हो गए। क्योंकि वो पतिव्रता थी, एक स्त्री को सदा तैयार रहना चाहिए कि भजन में जब पति जा रहा हो तो पति की सेवा करे, उसका साथ दे, परंतु पहले पति को ये सोचना चाहिए कि मैं भी भक्ति में हमेशा आगे रहूं, है ना। पति को हमेशा आगे रहना चाहिए, तभी तो स्त्री उसके पीछे पीछे चलेगी, तभी तो स्त्री उसको फॉलो करेगी। परंतु आज तो देखा जाता है कि पति तो और भी साथ ही नहीं देते, पत्नी को करने भी नहीं देते, खुद करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो पतिव्रता थी और साध्वी थी, तो अपने पति के पीछे पीछे उनके साथ चली। और वास्तव में यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जीवन का सबसे ज्यादा मुख्य जो उद्देश्य है वो भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए जब हम भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो भले ही वो कितनी कठिन तपस्या की जगह हो, परंतु मनस विनामिव सत संप्रहार, मनस विनामिव मतलब कि महान योद्धा जैसे जो युद्ध में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो उनको पता होता है कि हम युद्ध करने के लिए जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है युद्ध में तो बहुत कष्ट मिलेगा, वहां पर कोई हम लोगों को बहुत अच्छा फीस्ट मिलने तो नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा वहां पर सामग्री मिलने वाली है या बहुत ज्यादा खाना पीना मिलेगा या इंजॉय मिलेगा, नहीं, वहां पर तो युद्ध में जाने का मतलब है आपको कष्ट मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, तीर खाने पड़ेंगे, घाव खाने पड़ेंगे और किसी भी क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है, है ना। लेकिन फिर भी जो महान क्षत्रिय होते हैं वो सदैव तैयार है। कोई जरूरी थोड़े है कि आप युद्ध करने जा रहे हो तो आप ही जीतो, आपकी हार हो सकती है, आपकी मृत्यु, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को कह दिया, देखो अर्जुन युद्ध होने वाला है, पहले से मेरी बात सुनो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि मयि, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, मर जाओगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, परंतु मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जीतोगे। वो तो आगे जाके 11 चैप्टर में बताया था कि मैंने अपनी कृपा से पहले मार दिया है तुम्हें, खाली यंत्र निमित्त मात्र भवस्व साची, तुम्हें सिर्फ निमित्त बना, लेकिन संभव पहले बोल दिया था कि भाई संभव है, मृत्यु वृत्यु भी हो सकती है तुम्हारी। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि योद्धाओं को भले ही पता होता है कि हम जा रहे हैं तो मृत्यु संभव है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब उनको युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। तो उसी तरह से जो भक्त होते हैं उनको पता है कि जब हम तपस्या कर वृंदावन जा रहे हैं या कहीं पर भी तपस्या, अभी वृंदावन में जब जाते हैं भक्त कार्तिक मास की परिक्रमा में, तो ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत आनंददायक रूम में वो बैठे हुए होते हैं, नहीं, कभी कभी बहुत बहुत उनको पद यात्रा करनी पड़ती है और बहुत बहुत जाना पड़ता है हर जगह पे, यात्रा करते करते सुबह से शाम हो जाती है कंटिन्यू, लेकिन उनके हृदय में इतना हर्ष होता है, इतना आनंद। कभी कभी हम देखते हैं बहुत बूढ़े जिनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने उत्साह से यात्रा कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, हालांकि पांव जो है वो छिल जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से वो कष्ट सहने के लिए कोई परवाह नहीं करते। तो वास्तव में इस तरह के दुख का वर्णन करना चाहिए हमें, यहाँ से पता चलता है कि, लेकिन आजकल तो हम सब बस सारा दिन कंफर्ट लाइफ होनी चाहिए, लाइफ कंफर्ट होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, हर चीज में कंफर्टनेस चाहिए होती है, लेकिन वास्तव में जितनी जीवन में तपस्या होती है उतना ही सफल होना ज्यादा संभव है। मतलब तपस्या की आदत होनी चाहिए हमारे शरीर को, और आज का जीव यदि थोड़ी सी तपस्या इतनी ही कर ले कि सुबह जल्दी एक आध घंटे की नींद भी यदि भगवान के ऊपर कुर्बान कर दे, अपनी नींद का भी त्याग कर लेना, तो सबसे बड़ी तपस्या है। अभी कोई पूछ सकता है कि विदुर जी ने इनको क्यों बोला घर छोड़ के जाओ, हिमालय में जाओ, ये तो घर पे बैठ के भी भजन कर सकते थे ना, उनको खाली ये बोलना चाहिए कि भाई अभी घर पे बैठ के भजन करो, महामंत्र की जप करो, ऐसे बोल सकते थे ना। परंतु ये तो देखो युधिष्ठिर महाराज का घर था जहाँ पर स्वयं कृष्ण भी हमेशा आते रहते थे, बहुत सारे संत आते थे, सदैव कृष्ण चर्चा रहती थी, परंतु आनंद से जीवन जब हमारा होता है ना, आनंददायक होता है, तो उसमें बहुत तीव्रता से नाम नहीं निकलता। जब दुख मिलता है, जब जीवन में जब कोई संकट होता है, कष्ट होता है, तभी हम जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रेम के साथ, बहुत ज्यादा भाव के साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये जा रहे हैं, ये तो मरने के लिए जा रहे हैं ना, अब ये क्या सोचे, शरीर त्यागने के लिए तो जा रहे हैं, तो वहां पर हिमालय में कितनी सर्दी होगी, वहां पर मुझे कंबल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सोऊंगी क्या, खाऊंगी क्या, ये सब नहीं सोच रहे थे, क्योंकि अब तो शरीर त्याग नहीं जा रहे हैं, क्या खाना मिलेगा, क्या गर्म पानी नहाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह की कोई प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे थे। तो यहाँ इस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए और सदैव अपने नियम, जितने हमारे नियम है, मंगल आरती करना और प्रभात साधना करना, अपना जप, तो अपने नियम को पालने के लिए बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, जिस प्रकार योद्धा जंग में जाता है तो कितना ज्यादा आनंद से कर रहा होता है, तो हमें भी अपनी तपस्या, एकादशी की तपस्या, अभी एकादशी के अंदर हमें तपस्या करनी होती है, ये थोड़े आजकल क्या एकादशी फीस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खाओ बस एकादशी, ऐसा नहीं है। ये एकादशी भोगने के लिए नहीं है, बल्कि अपने शरीर को तपस्या कराने के लिए। तो हमें कम से कम भोग के, अभी देखो भगवान को वो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो ज्यादा तपस्या करते हैं और कम खाते हैं। जिस तरह से हम भी अगर देखें भौतिक जगत में, हमें वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है जो कम पेट्रोल लेती है और ज्यादा माइल्स ज्यादा देती है एवरेज, है ना। उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि कितना खा रहे हैं, कितना आनंद चाहिए इनको, और थोड़ी सी तपस्या कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन सक्सेस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें हमारे जीवन में तपस्या के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर गांधारी, हमें गांधारी के जीवन से और यहाँ धृतराष्ट्र के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सदैव अपने जीवन को भगवान के लिए तपस्या करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जीवन में दुख सहने का सदैव अभ्यास होना चाहिए। कम सोना, कम खाना, ये स्वाद होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक स्त्री को सदैव तैयार रहना चाहिए अपने पति की भक्ति में उसकी सहायता करने के लिए। अनुवाद देखिए, कंधार यानी गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी महारानी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं और जो सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबलिनी या गंधारी अत्यंत ही पति परायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा प्रतिवृत्ता स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी, सीता देवी भी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल में गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रहकर रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सब प्रकार के खतरों को झेलते हैं। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति बिल्कुल ही आकर्षित न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी जो वर्ण आश्रम में जो तीसरा आश्रम है अर्थात वानप्रस्थ आश्रम, उसके विषय में बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि आपको कोई आसक्ति नहीं होती है किसी भी अपनी पत्नी में, बच्चों में, लेकिन पत्नी अगर चाहे तो पति के साथ जा सकती है तपस्या करने के लिए जहां पर पति जा रहे हो, लेकिन सन्यास आश्रम में आप पति का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं नागरिकता की दृष्टि से यानी समाज की दृष्टि से क्या होता है, सन्यासी मृत मनुष्य माना जाता है कि अब उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं, अतएव उसकी स्त्री अपने पति से किसी प्रकार का संबंध ना रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। तो जब तक जीती रही गांधारी अपने पति के साथ तपस्या करती रही। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के
चिन्ह स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन के पालन करते हैं वे तीन दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी होते हैं। या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जाता जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांश हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दो तरह के सन्यासियों के विषय में बताते हैं कि एक मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दंड सन्यासी कहलाते हैं, और त्रिदंडी सन्यासी होते हैं जो कि वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं। तो फिर भी आगे बताया कि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो नरोत्तम होते हैं, और नरोत्तम हमने पहले पढ़ा कि जब तक अभी तक उनके शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बल होता है, यौवन होते हैं, तभी से वो भौतिक आसक्ति को समाप्त करके भगवत सेवा के लिए चले जाते हैं, और उनका आकर्षण ज्यादातर हिमालय की ओर जाकर तपस्या करने का नहीं होता, बल्कि वृंदावन और जगन्नाथपुरी जाने का होता है, और भगवत कथा के लिए, भगवत चिंतन के लिए, भगवान की लीलाओं का गान करने में सदैव उत्सुक रहते हैं। और जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो हिमालय की ओर जाते हैं, लेकिन वो धीर होते हैं। धीर के विषय में हमने पढ़ा था कि शरीर काम का रहता नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि अब भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जाए। और श्रील प्रभुपाद जी आके कहते हैं, महाराजा धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना तो कठिन था। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो अत्यंत ही सुंदर शिक्षा दी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, और इस शिक्षा को सुनकर विदुर जी अपनी भौतिक आसक्ति को तोड़कर हिमालय की ओर जा रहे हैं, और उनकी पत्नी गांधारी भी उनके साथ जा रही है। आगे देखते हैं, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।